नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे, संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे, अहम क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे और G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नीस पहुंचने पर होटल नेग्रेस्को में भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी और उत्साह के साथ स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेस मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन सम्पन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने बताया है कि उन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस्ड आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया है, जो लूनर लैंडर को चंद्रमा के बेहद ठंडे मौसम से बचा सकता है। कल बेंगलुरु में CSIR RISE कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए इसरो प्रमुख ने बताया कि अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने पर काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिनों तक काम कर सके। आर्टिफिशियल हीटर वाला ये लैंडर चंद्रमा के कठोर मौसम में भी काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक मदद मिलेगी। अबू धाबी में भारतीय दूतावास ने संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय पासपोर्ट, वीजा और कॉन्सुलर सेवाओं को संभालने वाले आउटसोर्स सर्विस प्रोवाइडर में बदलाव की घोषणा की है। ये बदलाव 1 जुलाई 2026 से लागू होगा। उस तारीख से भारतीय पासपोर्ट, वीजा और कॉन्सुलर सेवाओं के लिए सभी आवेदन अल हिंद टूर्स एंड ट्रेवल्स द्वारा संचालित तय केंद्रों के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। आवेदकों को सलाह दी गई है कि वे 1 जुलाई से पहले जमा किए जाने वाले सभी आवेदनों के लिए मौजूदा BLS इंटरनेशनल और SGIVS ग्लोबल केंद्रों का उपयोग जारी रखें और बदलाव से जुड़ी जानकारी के लिए आधिकारिक घोषणाओं का पालन करें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के क्रम में आज आयुष मंत्रालय ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। ये आयोजन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हैबिल्ट के साथ मिलकर किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय मुकाबला 17 जून को लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।